हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुर सबरवाल फ्रॉम वीजा मैटर. इज एन इमिग्रेशन एडवाइजर. हेलो अंकुर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग हम एफएम.
थैंक्स फॉर हैविंग मी राजनी.
ये बताइए कि ये जो 50,000 एप्लीकेशंस को रद्द कर दिया गया है और रिफंड की बात की गई है, जो ऑफशोर वीजा के वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा?
देखिए, इन एसेंस क्या हो रहा है कि जिस किसी ने भी टेम्पररी वीजा एप्लीकेशन डाली हुई है ऑफशोर से,
जी
न्यूजीलैंड के बाहर से, जो कि फाइनलाइज नहीं हुई है, उनकी एप्लीकेशन या तो लैप्स हो जाएगी और रिफंड कर देंगे, या फिर एप्लीकेशन रिटर्न कर देंगे और रिफंड कर देंगे. तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज है जो मैं समझा देता हूँ अभी. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आपने कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें कि वीजा अप्लाई करा है,
राइट,
जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन सी कैटेगरीज हैं,
हाँ जी,
तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा. जिन कैटेगरीज को वो कर लेंगे
तो कौन से कैटेगरीज
प्रोसेस,
हैं जो?
कल्चरली अरेंज्ड मैरिज विजिटर वीजा है, और पार्टनर ऑफ न्यूजीलैंडर्स जो हैं
जी
यू नो उनके लिए विजिटर, वर्क और रेजिडेंट वीजा,
राइट
और जो न्यूजीलैंडर्स के जो बच्चे हैं, चाइल्ड ऑफ न्यूजीलैंडर्स, उनके लिए विजिटर वीजा,
राइट
और डिपेंडेंट चाइल्ड, स्टूडेंट एंड रेजिडेंट वीजा.
ओके.
उसके अलावा दो कैटेगरी और है, एडॉप्शन विजिटर वीजा और एडॉप्शन प्री सिटीजनशिप विजिटर वीजा. अगर इन कैटेगरीज में है आपकी एप्लीकेशन तो हो जाएगा प्रोसेस,
ओके.
नहीं तो फिर आपको रीअप्लाई ही करना पड़ेगा.
अच्छा, तो जो आप रीअप्लाई कह रहे हैं, फिलहाल तो इन्होंने कह दिया कि भाई अभी हमारे पास बैकलॉग बहुत है और ये होने वाला नहीं है. तो अगर कोई बंदा बाहर बैठा है तो वो रीअप्लाई कब करेगा?
जब बॉर्डर्स खुलेंगे तभी करेंगे. अभी इन्होंने, आप अगर इनकी प्रेस रिलीज देखेंगे तो उसमें बोला है कि 10 अगस्त से पहले जिन्होंने किया है, यू नो जो उन्होंने डेट डाली है वो 10 अगस्त 2020 की डेट डाली है.
जी
उसमें बोला है कि भाई ये तारीख एक्चुअल में क्यों डाली है, क्योंकि ये तारीख वो तारीख है जब इमिग्रेशन ने बाहर की एप्लीकेशंस, ऑफशोर एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था लास्ट ईयर.
ओके.
बट इन्होंने किया क्या था कि अपना ऑनलाइन सिस्टम में चेंज नहीं किया, तो लोग अप्लाई फिर भी कर पा रहे थे. ऑल्दो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि 10 अगस्त के बाद या 10 अगस्त से नहीं करेंगे हम एक्सेप्ट.
ओके.
उससे क्या हुआ है कि भाई चूंकि उन्होंने बोला था और सिस्टम के अंदर चेंजेस नहीं किए,
राइट,
तो लोग अप्लाई करते रहे.
ओके.
और बट उनको अलाउ नहीं था, दे वर नॉट रियली अलाउड कि वो करें, बट वो करते गए. उसलिए उन्होंने इस बार जो अनाउंसमेंट किया है वो 10 अगस्त से पहले का अलग है, 10 अगस्त से बाद का अलग है.
राइट, कट
तो
ऑफ
10
दस
अगस्त के, हाँ, तो ये जो इस हफ्ते अनाउंसमेंट हुआ है उसमें उन्होंने बोला है कि हम लैप्स और रिफंड करेंगे एप्लीकेशंस जो 10 अगस्त से पहले हुई थी लास्ट ईयर लॉन्च, और जो 10 अगस्त के बाद हुई थी उनको करेंगे हम रिटर्न एंड रिफंड. और रिटर्न और रिफंड और लैप्स और रिफंड का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जिन लोगों का रिटर्न कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन लैप्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10 अगस्त के बाद से करी थी और फर्स्ट प्लेस में, इन द फर्स्ट प्लेस उनको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि इमिग्रेशन ने अनाउंस कर दिया था. बट चूंकि सिस्टम पे चेंज नहीं करे, लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो उनकी एप्लीकेशन लैप्स करने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा रिटर्न होगी. 10 अगस्त से पहले जब चल रही थी, जो जिन लोगों ने किया उनकी लैप्स होगी एप्लीकेशन. तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में लगभग 50,000 लोग इम्पैक्ट होंगे, जिससे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में इनका क्या है, बैकलॉग का प्रॉब्लम है. आप रेजिडेंट्स को देखें तो दो दो तीन तीन साल लग रहे हैं, तो वो 50,000 एप्लीकेशन तो ये ऐसे ही क्लियर कर देंगे. और तकरीबन $14 मिलियन का इनको रिफंड फीस में करना पड़ेगा. और जो कि सही बताऊं तो यू नो ये जो रेवेन्यू इमिग्रेशन लूज करेगी, दे कांट रियली अफोर्ड टू लूज, क्योंकि जो कॉस्ट है रिफंड का वो उनकी करंट इनकम से ज्यादा है.
So
actually there is a shortfall.
So why are you, I mean, then how are they going to do this? As you were saying ki shortfall hoga, unko ghata hoga.
Government se paise lenge aur kya kar sakte hain. Dekhiye, obviously it is very bad news for people who
yes.
have applied for visas,
yeah.
temporary visas, bahar se baith ke New Zealand ke, theek hai na?
Haan.
Inko to reapply tabhi kar sakte hain jab borders
खुलेंगे,
रीओपन होंगे या गवर्नमेंट फर्दर इंस्ट्रक्शंस देगी. ये उन लोगों के लिए भी बहुत बुरी खबर है जो कि यहाँ पे की यू नो जो बिजनेस पीपल हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयर्स फॉर एग्जांपल,
और वर्कर्स
ग्रुप्स जो हैं, जो टूर ग्रुप्स हैं वो भी अब नहीं आ पाएंगे, स्टूडेंट्स भी नहीं आ पाएंगे अनलेस की वो पीएचडी स्टूडेंट्स हों. एम्प्लॉयर्स भी अपना जो स्किल शॉर्टेजेस हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे अब. तो इसका फर्क तो पड़ेगा आने वाले टाइम में भी.
इसी से जुड़ा जो है वो रेसिडेंस एप्लीकेशन का भी है, और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में पाया गया, ऑफ कोर्स इट्स अ स्पेकुलेशन, कि कई सारे रेसिडेंसी वीजा को भी शायद लैप्स कराएं ये. तो डू यू हैव एनी थॉट्स ऑन दैट?
देखिए, मीडिया रिपोर्ट तो इस हफ्ते आया था, बट इमिग्रेशन ने उस रिपोर्ट में बोला था कि भी इमिग्रेशन ने ऐसा सजेस्ट किया, बट इमिग्रेशन ने बोला है कि अभी कोई डिसीजन इस बारे में नहीं लिया है उन्होंने. तो जब तक इमिग्रेशन अनाउंस नहीं करेगा, स्पेकुलेशन है. अगर गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि जैसे कि स्किल माइग्रेंट कैटेगरी है रेजिडेंस की, जो कि पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है, अगर वो बोलते हैं कि भाई हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, हम इसके अंदर भी उन लोगों का लैप्स और रिफंड कर देंगे जिन लोगों ने करंट पॉलिसी के अंदर अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करे हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है और लग भी अब रहा है कि शायद होगा, क्योंकि अब वो बैकलॉग कम करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एम्प्लॉयर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. तो लग रहा है कि रेसिडेंस में हो सकता है उन लोगों का जिनका ईओआई सबमिट हो चुका है बट अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ है, जिनको अभी तक इन्विटेशन नहीं आया है, क्योंकि स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी में रेसिडेंस अब बाय इन्विटेशन ही अप्लाई कर सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि सन 2019-20 में जिन लोगों ने ईओआई सबमिट करी थी इस कैटेगरी में, स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी में, जिनको की इन्विटेशन आ गया है बट उनका एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग चल रहा है बट फाइनल नहीं हुआ है कि अभी अप्रूव करना है कि डिक्लाइन, हो सकता है कि उनका भी लैप्स किया जाए एप्लीकेशन और उनको भी रिफंड किया जाए. बट ये होने का, ये दूसरा वाला जो स्टेज है यहाँ पे कि इन्विटेशन आ चुका है, उसको होने का चांस काफी कम है.
अच्छा.
वो इसलिए क्योंकि भाई वो लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, 2018 पे जाएंगे, 19 में जाएंगे, 20 में कौन से महीने से क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे. तो आई थिंक जिन लोगों का ईओआई पेंडिंग सिलेक्शन है उनका लैप्स होने का चांस है. हो सकता है गवर्नमेंट बोले कि भाई हम पॉइंट थ्रेशोल्ड बढ़ा के 160 से 180 कर रहे हैं और जो लोग 180 का भी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं उनका ईओआई पूल में पड़ा रहेगा, बाकी लैप्स और रिफंड हो जाएगा. और हो सकता है कि गवर्नमेंट ये भी बोले कि नहीं, जिस किसी का भी अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है और इन्विटेशन नहीं आया है सबका ही कैंसिल कर रहे हैं. तो अभी करने को तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, उनको लॉ चेंज करना पड़ेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनका की इन्विटेशन आ चुका था बट अभी डिसीजन नहीं आया.
ओके, द अदर वन इज द अभी जो लॉन्च हो चुका है इज वर्क एक्सप्लॉयटेशन वीजा जो अब है. व्हाट एग्जैक्टली इज इट गोइंग टू टारगेट?
देखिए ये यू कैन लिंक दिस टू द कंपलसरी एम्प्लॉयर एक्रेडिटेशन जो 1 नवंबर से इस साल से मैंडेटरी है, जो कंपलसरी मैंने आपको एक्रेडिटेशन है उन एम्प्लॉयर्स के लिए जो एम्प्लॉयर सपोर्टेड वीजा के लिए लोगों को हेल्प कर रहे हैं अपने स्टाफ को. मेरी ओपिनियन के अंदर ये जो एक्सप्लॉयटेशन वर्क वीजा है दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि आज की सेटिंग्स के अंदर जो पिछली सेटिंग्स थी उसमें वर्कर बताना नहीं चाहता था न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को कि भाई मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि उनका वीजा लिंक्ड होता है उनके एम्प्लॉयर के साथ. वीजा पे एम्प्लॉयर का नाम लिखा होता है कि आप इस एम्प्लॉयर के साथ इस जगह में काम करेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर सपोर्टेड वीजा. पहले लोग नहीं बताते थे क्योंकि उनको लगता था कि भाई एम्प्लॉयर पे एक्शन होगा, मेरी जॉब ना चली जाए, मेरा क्या होगा फिर. अब क्या है कि इन लोगों को 6 महीने का ओपन वर्क वीजा मिल सकता है अगर जो वो रिपोर्ट करते हैं एक्सप्लॉयटेशन वो इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन को क्रेडिबल लगे. तो एम्प्लॉयर पे तो एक्शन हो गई, बट वर्कर को लगता है लगेगा कि भाई मेरे को ओपन वर्क वीजा मिलेगा 6 महीने का तो मेरे पास सफिशियंट हो सकता है टाइम हो कि मैं जॉब ढूंढ पाऊं
दूसरा जॉब.
तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट करने पे उनको भाई ये मेन डिफरेंस है. बट इससे एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत चिंता बढ़ जाएगी. एक तो उनको 100% कंप्लायंस रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया उनको उनके स्टाफ ने और उनको लगा कि इमिग्रेशन को कि हाँ जी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो वर्कर को तो 6 महीने का वीजा मिल जाएगा, एम्प्लॉयर को किया जाएगा इन्वेस्टिगेट. इससे होगा ये इस वीजे की वजह से कि रिपोर्टिंग अब बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशंस बढ़ेंगी. ऑब्वियसली जिन लोगों को एम्प्लॉयर असिस्ट ये एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयटेशन वर्क वीजा अप्रूव कर दिया इमिग्रेशन ने वो इसी बेसिस पे करेंगे कि उनकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल है और उन एम्प्लॉयर्स के ऊपर तो फिर इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा होगी, ये प्रोसिक्यूशंस भी इससे बढ़ेंगी, पेनल्टीज भी बढ़ेंगी. एंड नाउ दे हैव अनदर थिंग टू लूज कि उनका एक्रेडिटेशन अगर अप्रूव हो गया तो कैंसिल हो सकता है. इट इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट. इससे एक्सप्लॉयटेशन कम होनी चाहिए इन थ्योरी, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को भी अब कंप्लायंस मेंटेन करने का एक एडवांटेज दिखता है कि भाई एक तो वर्कर को तो वीजा मिल जाएगा, हमारी इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाएगी और प्रोसिक्यूशन हो सकती है, पेनल्टीज लग सकती हैं, काफी ज्यादा पेनल्टीज हैं, 6 महीने तक बैन किया जा सकता है उनको एज अ मिनिमम, 6 महीने तक उनको स्टैंड डाउन पीरियड लग सकता है और अप टू 5 years उनको बैन भी किया जा सकता है. फाइनेंशियल पेनल्टीज आर यू नो कैन आल्सो बी इम्पोज्ड ऑन टॉप ऑफ
दैट. यस दैट्स राइट. तो होपफुली दिस शुड डिटर सम वेरी रोग एम्प्लॉयज फ्रॉम एक्चुअली गेटिंग इन टू द अदर साइड ऑफ द
एब्सोल्युटली
लॉ.
एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बोला कि ये लिंक्ड है एम्प्लॉयर एक्रेडिटेशन के साथ. एम्प्लॉयर्स को अभी तक इतना रिस्क नहीं था, अब उनको रिस्क ये है कि भाई अगर रिपोर्ट हो गया और क्रेडिबल पाई गई उनकी इन्फॉर्मेशन स्टाफ की, तो उनको तो वीजा मिल जाएगा 6 महीने का, वो तो सेफ है.
हाँ, बट
लेकिन
इनके ऊपर जो
एम्प्लॉयर्स के लिए
कार्यवाही.
प्रॉब्लम हो जाएगी.
हाँ जी,
और रीसेंट कोई भी नॉन कंप्लायंस, एक्रेडिटेशन की पॉलिसी में ये बोला गया है कि होगा कि भाई अगर कोई रीसेंट नॉन कंप्लायंस है एम्प्लॉयर की, तो फिर उनका एक्रेडिटेशन या तो मिलेगा ही नहीं उनको, या फिर अगर मिल चुका है तो रिवोक भी किया जा सकता है, रिसेंट किया जा सकता है. तो एम्प्लॉयर्स हैव मच टू लूज, दे आर बेटर ऑफ मेकिंग श्योर दैट दे इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस. इमिग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट लॉ फॉलो करेंगे तो अच्छा है, और माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है.
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे अंकुर. इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक यू.
ग्रेट टॉकिंग टू यू एज वेल. थैंक्स फॉर हैविंग मी.
थैंक्स. बाय.
थैंक्स. बाय.